नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता के सातवें अध्याय से चर्चा करेंगे, चौदहवां श्लोक है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मेरी ये जो दिव्य शक्ति है जो कि प्रकृति के तीन गुणों से बनी हुई है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो बड़े आसानी के साथ इस माया शक्ति को पार कर लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, भगवान के अनेक शक्तियां हैं और उनके सारे शक्तियां दिव्य हैं। हालांकि जीवात्मा भगवान के अंश हैं, वो भी दिव्य हैं, लेकिन भौतिक शक्ति के प्रभाव में आकर उनकी मूल शक्ति छिप जाती है और इस तरह से वो उस माया के प्रभाव से पार नहीं जा सकते। दोनों शक्तियां भौतिक और आध्यात्मिक भगवान से आ रही हैं, इसलिए दोनों ही शाश्वत हैं। जीवात्मा भगवान की परा प्रकृति से आता है, लेकिन माया शक्ति के प्रभाव के कारण वो भ्रम में पड़ जाता है। इसीलिए जीव को नित्य बद्ध कहा जाता है। नित्य बद्ध का अर्थ है कि कब वो इस संसार में बद्ध हुआ, इसका इतिहास से पता करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस भौतिक शक्ति के पंजों से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। हालांकि भौतिक शक्ति निम्न श्रेणी की है, लेकिन क्योंकि वो भगवान की इच्छा से कार्य कर रही है तो जीवात्मा उसको पार नहीं कर पाता। निम्न श्रेणी की शक्ति है भौतिक शक्ति, और उसको यहाँ पर दिव्य शक्ति बोला गया है क्योंकि वो भगवान से संबंधित है और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। भगवान से संबंधित होने के कारण वो इतने अद्भुत रूप से सृष्टि के रचना और नाश में कार्य करती है। वेदों में भी ऐसा बताया गया है कि हालांकि भगवान की माया शक्ति मिथ्या है, तो भी उस माया शक्ति के पीछे जो जादूगर हैं वह स्वयं भगवान हैं। गुण का एक और अर्थ होता है रस्सी। ये जानना चाहिए कि बद्ध जीव माया की रस्सी द्वारा बांधा गया है। जो व्यक्ति रस्सी से बंधा गया है, उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, वो अपने आप से बंधन से पार नहीं हो सकता। उसे ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो बंधन से परे है। एक बंधा हुआ जीव दूसरे बंधे हुए को मुक्त नहीं कर सकता, सिर्फ जो मुक्त पुरुष है वो दूसरे को मुक्त कर सकता है। इसलिए सिर्फ भगवान कृष्ण या कृष्ण के दिव्य प्रतिनिधि गुरुदेव बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। इन दिव्य व्यक्तियों की मदद के बिना व्यक्ति अपने आप से बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। भक्ति या कृष्ण भावना व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर सकती है। कृष्ण माया के स्वामी हैं, और अगर कृष्ण चाहें तो वह माया को बोल सकते हैं कि इस जीव को मुक्त कर दो। भगवान अपनी दया करते हैं उस समर्पित जीव पर जो मूलतः कृष्ण का पुत्र रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण की शरण में आना यही एकमात्र तरीका है माया के पंजे से मुक्त होने का। यहाँ पर इस श्लोक में माम एव प्रपद्यन्ते कहा गया है। माम एव ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। माम एव यानी सिर्फ कृष्ण या विष्णु को, ब्रह्मा या शिवजी को नहीं। हालांकि ब्रह्मा जी और शिवजी भी बहुत महान देवता हैं, वो करीब करीब विष्णु के स्तर पर हैं, लेकिन वे रजोगुण और तमोगुण के जो अवतार हैं वो माया से जीव को बद्ध अवस्था से मुक्त नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी और शिव जी भी माया के प्रभाव में आ जाते हैं। सिर्फ भगवान विष्णु ही माया के स्वामी हैं, इसीलिए वो ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और वेदों में भी ऐसा बताया गया है। तम एव वेदित्व यानी कृष्ण को जानने से ही मुक्ति मिल सकती है। शिव जी भी बोलते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है। भगवान शिव जी बोलते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशय। इसमें कोई शंका नहीं है कि भगवान विष्णु ही हैं जो कि सबके लिए मुक्ति के कारण है। ओम अज्ञान। श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर के इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज भारतवर्ष में लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 यानी आज से करीब 57 साल पहले भारत ब्रिटिश सरकार के राज्य के बंधन से मुक्त हुआ था, इसलिए आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज इस विषय पे मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हुए हैं या नहीं, और वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, जीव की स्वतंत्रता क्या है। एक बार शिला प्रभुपाद 4 जुलाई 1976 में अमेरिका में थे और उस दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को 1976 को 200 साल पूरे हुए थे। तो शिला प्रभुपाद जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने अपने प्रवचन की शुरुआत की इस बात से, रियल इंडिपेंडेंस मीन्स टू डिक्लेयर अवर डिपेंडेंस ऑन गॉड। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि यह जानना कि मैं भगवान के भरोसे हूं, मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूं। जीव का स्वभाव है कि वो हमेशा परतंत्र रहता है, या तो माया शक्ति के अधीन रहता है या वो भगवान की योग माया के अधीन रहता है। भगवान के दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। जो जीव कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, जो जीव भगवान के प्रति समर्पित है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में है, और जो जीव भगवान की आज्ञा पालन नहीं करना चाहता वो अपने आप भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाता है और उसी को बद्ध अवस्था कहा जाता है। तो दो प्रकार की अवस्था हैं, एक मुक्त अवस्था और बद्ध अवस्था। मुक्त अवस्था मतलब है कि यह स्वीकार करना कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। अगर जीव यह स्वीकार कर लेता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं तो वास्तव में मुक्त है। मुक्ति ही अन्यथा स्वरूपेण अवस्थितः। सच्ची मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना। और हमारा स्वरूप क्या है? हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर नाशवान है। ये शरीर तो एक झोला है, बैग, जिसे आप लोग बैग खरीदी करते हैं कुछ उठाने के लिए। ये शरीर एक झोले के समान है जिसमें हड्डी मांस और बहुत सारी चीज़ें हैं और आत्मा उसमें निवास कर रहे हैं। तो अपने आप को शरीर मानना यही हमारे बंधन का कारण है। और मुक्ति का मतलब है ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का नित्य सेवक हूँ। और भगवान की सेवा में लगना यही मुक्ति है। मुक्ति अन्यथा स्वरूपेण अवस्थितः, अपने स्वरूप में स्थित रहना। और हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम जीव कृष्ण के नित्यदास हैं। जैसे एक यंत्र, एक मशीन के कुछ पुर्जे होते हैं, कुछ पार्ट्स, अगर वो पुर्जे मशीन के साथ रहते हैं तो उसका उपयोग रहता है, उसका कुछ लाभ रहता है। लेकिन अगर उन अंश को, उन पुर्जों को मशीन से अलग कर दिया जाए तो उसका ज्यादा कुछ लाभ नहीं रहता। वैसे हम जब भगवान की सेवा में रहते हैं, हम भगवान से संबंधित रहते हैं तो हमारी कुछ कीमत होती है, जीव उस समय खुश रहता है, सुखी रहता है। लेकिन जैसे जीव भगवान से अलग हो जाता है, भगवान की सेवा को त्याग देता है, तब वो अपने आप माया शक्ति के, प्रपंच के लहरों में फंस जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, पाश्चातिया माया तारे जपटिया धरे। जैसे कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करता है जीव, कृष्ण की आज्ञा पालन नहीं करना चाहता, अपने आप वो माया शक्ति में आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सरकार के नियम है, ट्रैफिक के नियम है, इस तरह से चलाना है कार को, और अगर कोई नियम का पालन नहीं करता तो अपने आप वो सजा के काबिल बन जाता है, या अगर कोई बड़ा अपराध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दो प्रकार की, हम दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं, या तो हम सरकार के बनाए हुए नियम का पालन करें और स्वतंत्रता से रह सकते हैं, तथा कथित स्वतंत्रता। या हम अगर सरकार के नियम का अवलंघन करते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति नियम पालन नहीं करता, अपने आप उसको जेल के नियम पालन करना पड़ता है। ऐसे ही जो भगवान कृष्ण के बनाए हुए नियम का पालन नहीं करना चाहता, जो भगवान कृष्ण की परम सत्ता को नहीं स्वीकार करना चाहता, अपने आप माया उसको जेल में डाल देती है। तो संसार जो है एक बहुत बड़ा जेल है, और सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है कि संसार रूपी जेल से बाहर निकलना। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता कि हम सब जेल में हैं, ये कार्यक्रम जेल में हो रहे हैं। ऑफकोर्स राधा कुंज बिहारी मंदिर जेल में होते हुए भी जेल से बाहर है। एक बार मैं कोल्हापुर में गया था जेल में प्रचार के लिए, और वहाँ पर हमने एक प्रवचन किया था कुछ, क्योंकि कुछ कैदी थे वो भी सुनना चाहते थे भगवान के बारे में। तो हम उनको समझा रहे थे कि कैसे ये जो जिस स्थिति में आप हैं वो एक जेल है, लेकिन ये जेल एक विशाल जेल का भाग है, ये पूरा संसार ही एक जेल है। जो व्यक्ति नियम पालन नहीं करते उसको कैद खाने में डाला जाता है। ऐसे जो व्यक्ति कृष्ण की आज्ञा पालन नहीं करना चाहते वो इस जेल में रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमें भूल जाते हैं हम इस जेल में हैं, और जेल से बाहर निकलने के बजाय हम प्रयास करते हैं कि इसी जेल में थोड़ी अच्छी स्थिति में रह सकें। अर्थात जेल में भी अलग अलग कमरे होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आप लोग जानते होंगे, शायद गए नहीं होंगे लेकिन पता होगा। तो कभी कभी कोई कैदी होता है जिसने जिसको बहुत सुविधा दिए जाते हैं। अक्सर जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति या जो पहले सरकार में रह चुके हैं, जब वो जेल में जाते हैं तो उनको सुविधाएं दिए जाते हैं, उनको अच्छा कमरा होता है जेल में ही, उनको ये भी जेल में, हरी बोल हरी बोल हरे कृष्णा, आत्मा वही है समदृष्ट। तो जो ये सर, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति जेल में जाता है किसी कारणवश, तो उसको बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है बैठने के लिए, रहने के लिए, और कभी जेल के अंदर उसको टेलीविज़न, स्विमिंग पूल, इस तरह सब सुविधा दिए जाते। और दूसरी ओर कोई कोई जेल होती है जहाँ पर व्यक्ति को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पत्थर तोड़ना पड़ता है अलग अलग कर्मों के अनुसार। ऐसे ही संसार में जो अलग अलग जीव हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, लेकिन वास्तव में सब दुखी हैं क्योंकि सब जेल में हैं। मान लो कोई व्यक्ति जेल के अंदर है और उस देश के राजा उससे मिलने के लिए आते हैं, उस देश के राजा उस पर खुश हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, और वो कहता है कि मुझे यही चाहिए कि मैं ये थर्ड क्लास सेल में हूँ, मैं थर्ड क्लास कमरे में हूँ, तृतीय श्रेणी के, मुझे प्रथम श्रेणी के जेल में ले जाओ। तो ये बुद्धिमत्ता है कि मूर्खता है? ये मूर्खता है, लेकिन ये मूर्खता हम सब कर रहे हैं। इस संसार में सभी लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि मैं स्थिति में हूँ, अब मेरे पास थोड़ा धन है, मैं और अच्छी स्थिति में जाना चाहता हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं जब ज़्यादा धन प्राप्त करूँगा तभी सुखी होऊंगा, मैं अब सिर्फ लखपति हूँ, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, उसके बाद फिर अरबपति बनना चाहता, उसके बाद फिर आगे क्या, खरबपति, फिर बाद में नरकपति। लोग सोचते हैं कि मैं सुखी हो सकता हूँ, इस दुनिया में सब दुखी हैं, लेकिन माया इतनी शक्तिशाली है कि माया आपको ऐसा दिखाती है कि आप सुखी हो सकते हो। हर जीव हालांकि दुखी है, माया की एक शक्ति आवरणात्मिका शक्ति, और वो शक्ति आपको ऐसा आभास दिलाती है कि आपको लगता है कि मैं सुखी हूं। माया बहुत चतुर है, अगर आपको पता होता कि आप जेल में हैं तो आप तुरंत दौड़ के जेल से बाहर निकलने का प्रयास करते। एक्चुअली मानव जीवन ये अवसर है जेल से बाहर निकलने का। साधु और गुरु ये रास्ता दिखाते हैं कि जेल का दरवाजा कहाँ है, और मनुष्य शरीर का मतलब ये है कि जेल के दरवाजे खुले हैं, सिर्फ आपको बाहर निकलना है, और बाहर निकलने का तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सरल तरीका है, लेकिन माया क्या करती है, पहली बात तो जीव को पता ही नहीं होता कि मैं जेल में हूँ, और जब जीव को पता चलता है कि मैं संसार के प्रकृति के गुणों में फंसा हुआ हूं, मुझे जेल से बाहर निकलना है। जैसे जीव बाहर निकलने का प्रयास करता है, माया उसको प्रलोभन देती है कि मत जाओ, जेल में तकलीफें हैं लेकिन उतना बुरा नहीं है, यहीं पर रहो, सुखी रहो। सिर्फ जिसको गुरु की कृपा मिलती है वो व्यक्ति जेल से बाहर निकल सकता है, नहीं तो ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सब दुखालय है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्ति नो अर्जुन, भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सब जगह पर पुनर्जन्म है, दुख जरा जन्म जरा जन्म जन्म जरा व्याधि और मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब दुख हैं, लेकिन फिर भी प्रलोभन के कारण लगता है कि ये सब कुछ अच्छा है, ये माया की तरकीबें हैं। इसलिए हमें शास्त्र से जानना चाहिए, पहली बात है समझना चाहिए कि मैं जेल में हूं, मुझे स्वतंत्र बनना है। स्वतंत्र बनना मतलब भगवान के चरणों में जाना, ये स्वतंत्रता है। अगर हम भगवान के चरणों में हैं तो हम अपने वैधानिक स्थिति में हैं, और उस स्थिति में हम भगवान की सेवा करने में सच्चिद आनंद अनुभव कर सकते हैं। एक बार इंद्र को शाप मिल गया था, इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपराध किया था और उस अपराध के कारण वो सुअर बन गए, तो मिस्टर इंद्र मिस्टर सुअर बन गए और सुअर योनि में रहने लगे। आप जानते हैं हर योनि में परिवार होता है, तो वो बड़े आनंद के साथ रहते थे, मिस्टर इंद्र मिसेस इंद्र बेबी इंद्र उसके बच्चे, और उनका बहुत सुंदर घर था, शायद दरवाजे वगैरह नहीं थे लेकिन आप जानते हैं सुअर कहाँ रहते हैं, और उसी में बड़े खुश थे, उसी में बड़े खुश थे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इंद्र तृप्ति का स्वभाव है कि जैसी आपको मन और इंद्रिय मिलता है आपको वही चीज अच्छी लगती है। जब सुअर सुअर जो खाता है वो खाता है आप जानते हैं, जब वो चीजों को देखता है तो उसको मुंह में पानी आने लगता है, उसको लगता है रसीली चीजें। जैसे आप विष्टा को देखते हो तो आपको लगता है क्या देख लिया, दूसरी ओर देख लेते, लेकिन सुअर जब देखता है तो उसको लगता है कि कब प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सूखी विष्टा और गीली विष्टा का, हमारे लिए सूखी विष्टा है गीली विष्टा क्या आपको मैं पूछूंगा नहीं, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन जो सुअर होता है उसको लगता है गीली विष्टा बहुत अच्छी है, इसमें रस है जूस है, और सूखी विष्टा इतनी अच्छी नहीं है। तो सुअर उसी में, इंद्र जो सुअर बन गए थे उसी में मग्न हो गए, उनको उसमें आनंद आने लगा। और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत समय से इंद्र का पोस्ट खाली है, तो इंद्र के पास गए, बोले चलो प्रभु जी चलो ऊपर चलो धाम में आपके स्वर्गलोक में, आपका जगह खाली है। तो इंद्र बोला क्यों, यहाँ पर मैं खुश हूँ। नहीं चलो वहाँ पे बहुत अच्छे नंदन कानन गार्डन है, अप्सराएं हैं और बहुत सुंदर भोजन है। और बोले नहीं यहाँ पे इतना अच्छा है मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये देखो मिसेज इंद्र बेबी इंद्र और इतना सुंदर यहाँ भोजन सब बना हुआ है, तो उसको उसी में मजा आता है। और फिर अंत में भगवान ने या नारद मुनि कृपा करके उनको उद्धार कर देते। तो माया का प्रभाव है, माया के प्रभाव के कारण जीव जिस स्थिति में होता है उसी में सोचता है मैं परम सुखी हूँ, ये माया की तरकीब है। इसलिए स्वतंत्रता का मतलब है कि पहली बात तो ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। हमारे सारे दुखों का कारण ये है कि हम भूल गए हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर एक बड़े संत हुए हमारी परंपरा में, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव कृष्ण दास ए विश्वास कोर लो तारो दुख नाई। अगर आप ये विश्वास कर लेते हो कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं तो आप सब दुखों से मुक्त हो सकते, सब दुखों से मुक्त हो सकते। सिर्फ ये स्वीकार करना है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण की सेवा करनी है और कृष्ण का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी स्थिति इस दुनिया में ऐसी है जैसे एक पक्षी पिंजड़े के अंदर है, हम फंसे हुए हैं इस भौतिक मन और इंद्रियों के साथ। आज दुर्भाग्य की बात क्या है कि लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस पिंजड़े को सजाने का, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पिंजड़े के अंदर जो पक्षी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिंजड़े के अंदर पक्षी है वो आत्मा, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ। और ये पिंजड़ा है ये शरीर है जो कि पंच तत्वों का बना हुआ है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के आवरण के अंदर सच्चिदानंद आत्मा है, जो कि भगवान कृष्ण के नित्य सेवक है। हमारी इस दुनिया में स्थिति ऐसी है जैसे कोई स्वप्न देख रहा होता है। जब कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है तो कभी बहुत खुश हो जाता है, स्वप्न में वो देख रहा है कि मैं राजा बन गया हूँ, स्वप्न में देख रहा हूँ कि मैं बड़े सुखी हूँ, या स्वप्न में देख रहा है कि एक शेर मुझे खाने आ रहा है या खा लिया है और मैं रो रहा हूँ। तो पास में बैठा हुआ व्यक्ति वो देखता है तो उसको बोलता है कि अरे तुम क्यों रो रहे हो, तो उठकर बोलते हैं मुझे एक शेर आक्रमण कर रहा है, लेकिन वास्तव में शेर नहीं है वहां पर, उसको ऐसा लग रहा है। ऐसे हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं इसलिए अनेक प्रकार के सुख और दुख भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो हमारा इस संसार से कुछ लेना देना है ही नहीं। हमारा संबंध भगवान कृष्ण के साथ है, भगवान के धाम में, लेकिन इस बद्ध अवस्था में हम अपने आप को भगवान से भूल गए हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं। और श्रील प्रभुपाद और जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं वो हमको इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि सिर्फ एक मुक्त व्यक्ति दूसरे मुक्त व्यक्ति को मदद कर सकता है। मान लो मेरे हाथ और पैर बांधे हुए हैं और आपके भी हाथ और पैर बांधे हुए हैं, तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपको मदद करूं और न ही आप मेरे को मदद कर सकते हैं। उसी प्रकार भौतिक इच्छाओं के कारण सब जीव बंधे हुए हैं, सिर्फ जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं जब वो कृपा करते हैं तो हमें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए भक्ति का जो तरीका है वो है गुरु और वैष्णव की कृपा मांगना। जब गुरु और वैष्णव की कृपा होती है तब व्यक्ति संसार रूपी जेल से बाहर निकल सकता है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं कि एक बार एक राज्य में एक राजा के पुत्र और उसी राज्य में जो मंत्री होता है उसका पुत्र और उसी राज्य में जो खजांची होता है उसका पुत्र, राजा के पुत्र, मंत्री के पुत्र और खजांची के पुत्र, ये तीनों मिलकर एक दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ पर वो कोई गलती कर बैठते हैं, उनका कोई अपराध हो जाता है दूसरे राज्य में, तो वहाँ के राजा इन तीनों को गिरफ्तार कर देते हैं और गिरफ्तार करते समय उनको कहते हैं कि आपको सजा दी जाएगी। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो इसलिए तुमको सोने के हथकड़ियों से बांधा जाएगा, और जो मंत्री का पुत्र है उसको बोलते हैं क्योंकि तुम मंत्री के पुत्र हो तुमको चांदी के बेड़ियों से बांधा जाएगा, और जो खजांची का पुत्र है उसको लोहे की बेड़ियों से बांधा जाएगा। तो प्रश्न यह है कि इन तीनों में से कौन से व्यक्ति की स्थिति अच्छी है, जो लोहे के बंधन में है या चांदी के बंधन में है या जो सोने के बंधन में है, कौन भाग्यशाली है? आप सब भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने जान लिया ये बात। इस भौतिक दुनिया में हमारी स्थिति ऐसी है, कोई व्यक्ति बहुत सुखी अवस्था में है, स्वर्ग लोक में है, या इस दुनिया में भी बहुत अच्छे ऐश्वर्यशाली स्थिति में है, उसके बहुत अच्छा मकान है, एयर कंडीशन कार है, आगे पीछे 10-12 सर्वेंट्स हैं, अच्छा भोजन है, स्वास्थ्य अच्छा होने पे कभी कभी वो खा सकता है, तो उसकी स्थिति ऐसी जैसे सोने की चेन्स है। और दूसरा है व्यक्ति जो किसी तरीके से अपने पालन कर रहा है अपने मुश्किल से, वो चांदी की बेड़ी में, और कोई है जो बहुत दुखी है वो लोहे की बेड़ियों की अवस्था में। लेकिन वास्तव में सुखी कोई नहीं है, सब बंधन में है। तो भक्ति का मार्ग जो है वो हमें बंधन से मुक्त कराता है। और सच्चे मुक्ति का अर्थ क्या है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इंडिपेंडेंस मीन्स टू डिक्लेयर अवर डिपेंडेंस ऑन गॉड। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि अपने ये जानना कि मैं भगवान के भरोसे हूं, मेरा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, मैं भगवान का दास हूं, और जिस स्थिति में भगवान रखेंगे वही स्थिति मेरे लिए सर्वोच्च है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ गया है उसकी स्थिति ऐसी है जैसे बिल्ली के बच्चे की होती है। बिल्ली के एक छोटा बच्चा है और उसी बिल्ली के सामने छोटा बच्चा भी है और एक चूहा भी है। जब बिल्ली उस छोटे बच्चे को अपने दांतों से उठाती है तो उस बच्चे को कोई डर नहीं लगता, उसको आनंद का अनुभव होता है क्योंकि उसके लिए वो देख रहा है कि मेरी माँ है। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को उठाती है तो चूहे को डर लगता है क्योंकि उसका अंत करीब है। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ गया है, जिसने सीख लिया है कि कैसे भगवान की शरणागति में रहकर जीवन बिताना है, जैसे भगवान यह बोल रहे हैं श्लोक में, मामेव यह प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतीते, जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जिस व्यक्ति ने भगवान को जान लिया है और भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लिया है उसके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो भगवान को नहीं जानता वो अपने आप बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में रहते हैं और फिर वो नाना योनि में 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। आज देश भर में लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, फ्लैग झंडा ऊपर उठाया जाता है और कुछ मिठाइयाँ बांटे जाती हैं। लेकिन आज मेरा आप सबसे प्रश्न है, 50 साल से ज़्यादा हो गए कि हम ब्रिटिश राज्य के बंधन से जो है मुक्त हो गए हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में मुक्त हो गए हैं? सच्ची मुक्ति जो है वो आत्मा की मुक्ति होती है और वो संस्कृति के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आज भी हम देखते हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं, और स्पेशली ऑफिसेस में और कारखानों में सब जगह पर हम देखते हैं अभी भी ब्रिटिश सरकार के जो संस्कार हैं लोगों के अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ती है। सबसे एक प्रमुख उदाहरण है चाय, है कि नहीं? ये चाय कहाँ से आया? ये आयुर्वेद में नहीं दिया गया है चाय, ये ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया है। ब्रिटिश सरकार पहले लंदन से या ब्रिटेन से चाय पैदा करा के यहाँ पर लेकर आने लगे और लोगों को मुफ्त में बांटने लगे। और ये प्रवृत्ति है, कोई भी चीज़ मुफ्त में मिलती है और स्वादिष्ट है तो लोग लेना चाहते हैं, तो लोगों ने पीना शुरू किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको फिर बेचना शुरू किया। पहले फ्री में दिया और लोगों को आदत होगी, लोगों ने और मांगा तो कहा कि अभी आपको इसका पेमेंट करना होगा। यही में उन्होंने क्या किया कि भारत में चाय उगाने लगे और वो चाय को उगा के भारत में फिर ब्रिटेन में भेजते, वहाँ पर इसकी पैकिंग की जाती, मेड इन ब्रिटेन का पवित्र ठप्पा लग जाता और उससे उसकी कीमत बढ़ जाती है फिर, और फिर वो यहाँ पर भारत में बिक्री होती। ये विदेश संस्कृति का स्वभाव है और अभी भी हमारे देश में देखा जा रहा है। तो क्या स्वतंत्रता है? खाली मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है और किसके हाथ में धन राशि है, उससे स्वतंत्रता नहीं होती। अगर वास्तव में हम भारत के निवासी हैं तो हमें भारत की संस्कृति का पालन करना चाहिए। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है उसका कर्तव्य है कि अपने जीवन को सफल बनाए, कृष्ण भावना को स्वीकार करके, वैदिक संस्कृति को स्वीकार करके, आत्मा को पहचान कर स्वयं अपना जीवन सफल करे और दूसरों को ये अवसर दे। गीता और भागवत का संदेश प्रचार करना, यह भारत की संस्कृति है। आज कितने लोग हैं भारतवर्ष में जो गीता और भागवत का प्रचार कर रहे हैं? धीरे धीरे हम देखते हैं कि टेलीविजन, और अब टेलीविजन के बाद सैटेलाइट टीवी शुरू हो गया है, मंदिरों के शिखर दिखाई नहीं पड़ते, इतने एंटेनास दिखाई पड़ते हैं, और उसमें बहुत से कम शोज हैं टेलीविजन के जहां पर आपको गीता और भागवत सुनाई पड़ता है। तो क्या हमारा देश प्रगति कर रहा है या अवनति की ओर जा रहा है? क्या हम मुक्त हो रहे हैं या शरीर और इंद्रियों के बंधन में और कड़ाई के साथ जकड़े जा रहे हैं? हमारी संस्कृति देखिए, अधिकांश लोग ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में या घरों में या यहां भी हम देखते हैं, अधिकांश लोग अभी भी पैंट और शर्ट पहनते हैं। यह हमारी स्वतंत्रता का लक्षण है या परतंत्रता का? हम इतने प्रभावित हो गए हैं विदेश की संस्कृति से, अगर कोई धोती कुर्ता पहनते तो हमको आश्चर्य होता, अरे तुमने ये क्या पहना? श्रील प्रभुपाद एक बार मजाक में कहानी बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो है ब्रिटिश सरकार के समय, वो भारत का था और उसको वैदिक संस्कृति में बहुत श्रद्धा थी, तो उसने एक धोती कुर्ता पहने हुआ था और एक विदेशी जो ब्रिटिश सरकार का था वो मजाक कर रहा था उनकी, वो बोला था ये आपने धोती पहनी है, धोती में आप पीछे बांधते थे, क्या है यहाँ पर? तो उसने ब्रिटिश सरकार की टाई पकड़ ली, बोले ये क्या है? बोला ये मेरी टाई है। तो वो भारतीय बोला ये मेरी बैक टाई है। हमारी आदत हो गई कि हम नकल करना चाहते हैं हर एक चीज की। वास्तव में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो अलाहाबाद में रहते थे 1927 में, उस समय जो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके पिता वहां पर रहते थे और वो दवाई लेने जाते थे शिला प्रभुपाद की भी दवाई की दुकान थी, प्रयाग फार्मेसी उसका नाम था, और लोग दवाई लेने आते थे और दवाई लेने के समय पूछते थे कि ये दवाई है आपके पास? हाँ है, लीजिए। अच्छा ये भारत में बनी है? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, यही दवाई जो लंदन में बनी है, मेड इन लंदन, जिसके ऊपर पवित्र ठप्पा है, क्योंकि लंदन की पवित्र वायु का स्पर्श होने से वो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है, तो मुझे वही दवाई चाहिए। उनको बताया गया कि ये जो भारत में बनी है वही है, इसकी कीमत 10 रुपये है, और ये जो बाहर बनी है इसकी कीमत 50 रुपये है। नहीं नहीं, मुझे वही चाहिए क्योंकि ये यूरोप की है। तो आज भी ये संस्कार अभी दिखाई पड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो है मांस बेच रहा था। अभी मांस तो मुझे पूरा विश्वास है आप में से कोई नहीं लेते, और लेते भी होंगे तो आज से छोड़ देंगे क्योंकि हम बुरी आदतें हैं, ये हमको बांध के रखती हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, एक व्यक्ति मांस बेच रहा था, कुत्ते का मांस, और जब किसी व्यक्ति ने पूछा ये क्या बेच रहे, बोले कुत्ते का, बोले कुत्ते का मांस कोई खाता है? कुत्ते का मांस तो बहुत निम्न लोग खाते। तो नहीं नहीं साहब, ये यूरोपियन कुत्ता है। तो ये हमारे अंदर, ये भारत के अंदर भी अभी ये अंधश्रद्धा है कि जो भी पाश्चात्य देश से आ रहा है, जो भी विदेश से आ रहा है, वो वास्तव में हमारे लिए अच्छा है। हम अपने घर में, हमारे आंगन में जो सोना और चांदी है उसको भूल रहे हैं, जो वैदिक संस्कृति है, जो गीता और भागवत का संदेश है उसको भूल रहे हैं, और ये जो कांच के टुकड़े हैं उसकी खोज में हम विदेश की संस्कृति को अपना मान रहे हैं। भारत की सच्ची स्वतंत्रता जब होगी, जब भारत के बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री धोती कुर्ता और तिलक लगाएंगे और सब मिलके पार्लियामेंट में गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी ऐसी, वो बोले थे एक बार एक समय आएगा जब हाई कोर्ट के जज भी तिलक लगाएंगे और भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, कंठीमाला ग्रहण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जब बंबई में थे तो उन्होंने एक बार एक पत्र लिखा था, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी को, उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि मेरा सुझाव है कि हमारे देश में जो नेता होते हैं वो सब ऐसे होने चाहिए जिनको 4 नियम पालन करने चाहिए, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना और परस्त्री संग नहीं करना, क्योंकि ये जो 4 पाप क्रिया हैं वो हमको इस संसार में बांध के रखते हैं, और जो व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन करता है वो वास्तव में स्वतंत्र बन सकता है। श्रील प्रभुपाद जी का लेटर था कि ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड बी इनिशिएटेड डिवोटीज, जितने भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको दीक्षा लिया भक्त होना चाहिए, तब वास्तव में देश की प्रगति होगी। नहीं तो वास्तव में आजकल हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रिटिश जमाने में भी जितने लोगों को धर्म के प्रति आस्था थी, जितनी श्रद्धा थी, वो उसके उनके जाने के बाद वो श्रद्धा और कम होती गई, क्योंकि वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हुआ, और स्वयं श्रील प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष करने के बाद भारत में बहुत प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन कोई व्यक्ति गीता के संदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। अंत में श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए और अमेरिका में जाकर उन्होंने ये हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की। श्रील प्रभुपाद ये बहुत बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि भारत के लोगों को आदत है कि कोई चीज़ मेड इन लंदन या मेड इन यूएसए है तो उसको तुरंत स्वीकार करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, वहाँ अमेरिकन युवकों को और युवतियों को कृष्ण भक्त बनाया, वे लोग जो हिपीज थे, जो नशीली चीज़ लेते थे, उन सबको कृष्ण नाम का नशा पिलाया और उनकी सारी बुरी आदतें दूर कर दी, और फिर वो उनको भारत में लेकर आए और भारतवासियों को बताया कि देखो आपको मेड इन यूएसए सब अच्छा लगता है, ये देखिए ये अमेरिका के भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे दीज आर अवर डांसिंग वाइट एलिफेंट्स। तो कई बार मुझे याद है जब मैं श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन बंबई में अटेंड किया था 1977 में, तो श्रील प्रभुपाद जी अक्सर ये जोर देते थे, अपने शिष्यों का उदाहरण देते थे कि ये देखो ये व्यक्ति हैं जो ऐसे संस्कृति में पैदा हुए हैं जहाँ पर मांस भक्षण और शराब पीना आम तौर पर चलता रहता है, लेकिन आज ये चैतन्य महाप्रभु कृपा से ये सब बुरी आदतों का त्याग कर दिए, अपने बालों को काटकर सरल सादे वस्त्र पहनकर कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे ये हम लोग को अभी सिखा रहे हैं, जो हम भूल गए हैं, जो चीज उसी चीज को जागृत करा रहे हैं। तो वास्तव में हमारे देश की स्वतंत्रता जब होगी, जब हम मूल जो वैदिक संस्कृति है जिसका आधार है कृष्ण भक्ति, जब हम वो स्वीकार करेंगे तब वास्तव में स्वतंत्रता मिलेगी। और वो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं वो कैसे संभव है। भगवान बोल रहे हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी माया शक्ति को पार करना बहुत मुश्किल है, दुरत्यया असंभव है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। हालांकि वो निम्न श्रेणी के है, इन्फीरियर है और हम सुपीरियर हैं, लेकिन फिर भी ये माया शक्ति जो है भगवान के द्वारा ही शक्ति प्राप्त की है, इसलिए उसके अंदर इतना प्रभाव है कि हमको बांध के रखी है इस संसार में। लेकिन कृष्ण बोलते हैं आप मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण परम दयालु हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, बहुत दयालु हैं, और वो हमको तरीका दिखा रहे हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओ। अगर आप मेरी शरण में आओगे तो माया देवी के पंजे से मुक्त हो सकते। कृष्ण राजा के समान है। अगर किसी कैदी ने बहुत भी अपराध किया हो, अगर राजा या देश का अध्यक्ष प्रेसिडेंट अगर वो आज्ञा देता है कि इसको मुक्त करा दिया जाए, चाहे उस कैदी ने कितने भी अपराध किए हो, कितने भी मर्डर भी किया हो, अगर राजा या अध्यक्ष आदेश देता है कि इसको मुक्त करा दिया जाए, इसको तुरंत मुक्त करा दिया जाए। ऐसे कृष्ण त्रिलोकेश्वर हैं, ब्रह्म और शिव के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। जब जीव भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, बहुत जन्मों से मैं आपको भूल गया था और नाना नाना योनि में अनेक प्रकार के सुख और दुख का भोग किया है, अब हे कृष्ण मेरे लिए आपके सिवाय कोई आश्रय नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा भजन में बोलते हैं, एको न बुझी नो प्रभु तोमार चरण, कृष्ण मैंने जान लिया कि आपके चरण ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब व्यक्ति इस समर्पण की भावना से भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस समर्पण की भावना से हम भगवान को पुकारते हैं, कृष्ण राधा रानी को, तब हम इस जेल से मुक्त हो सकते हैं। तब वास्तव में वैयक्तिक स्वतंत्रता, इस देश की स्वतंत्रता और पूरे विश्व की स्वतंत्रता हो सकती है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी से। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर बोलते हैं कि हमेशा राधा रानी की कृपा मांगनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, वृंदावन में सब लोग पुकारते हैं ऐसे, राधे राधे, आप लोग सुबह से निर्जल कर रहे हैं लग रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए, राधे 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 राधे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई राधा रानी के नाम को पुकारता है तो राधा रानी जो कि बहुत दयालु है, कृष्ण से भी दयालु है, राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं कि ये भक्त बहुत अच्छा है, चाहे बदमाश नंबर एक भी हो, हम सब हैं, जो भी इस दुनिया में आया बदमाश नंबर एक है, नंबर दो होते तो वही रहते थे हम लोग। जब राधा रानी निवेदन करते हैं कि अच्छा भक्त है तो कृष्ण उनके निवेदन को नहीं ठुकरा सकते, चाहे आप कितने भी पतित हो, अगर राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं और वो आपके लिए प्रार्थना करती हैं तो कृष्ण आपको मुक्त कर देते। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो उन्होंने कविता लिखी थी इस तरह से, ओ पुण्य होबे जबे राधा रानी खुशी होबे, जब राधा रानी प्रसन्न होंगी तो आपको कृष्ण की कृपा मिलेगी। और उसी राधा रानी के भाव को स्वीकार करके कृष्ण कलयुग में फिर से आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो हम सबको इस संसार के जेल से मुक्त करने के लिए, हमको वापस गोलोक वृंदावन ले जाने के लिए। श्री प्रभुपाद एक बार अमेरिका में लेक्चर में बता रहे थे कि लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू सेव अस, टू सेव यू, आपको बचाने के लिए आए। और श्री प्रभुपाद जब प्रवचन कर रहे थे तो जो सुनने वाले लोग थे उनमें से कई थे, अधिकांश अमेरिकन थे। श्रील प्रभुपाद जी का उच्चारण बंगाली इंग्लिश था तो वो ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे, लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू सेव अस, टू सेव यू, आपको बचाने के लिए। तो किसी ने आकर पूछा चैतन्य प्रभुपाद से, लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू सेव अस और शेव अस. हमको सेव करने के लिए या शेव करने के लिए. श्रील प्रभुपाद ने देखा कि ऑडियंस में बहुत से लोग थे जिनके पास लंबी लंबी दाढ़ी थी, जो हिप्पीज थे. तो श्रील प्रभुपाद जी मुस्कुरा कर बोले, ही हैज कम टू सेव यू एंड ऑल्सो शेव यू. आपको बचाने के लिए भी आए हैं और आपको साफ रखने के लिए भी आए. चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो ओरिजिनल, जैसे हम जानते हैं कि इस देश में महान नेता महात्मा गांधी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरुआत किया था कि बिना कुछ अस्त्रों के उपयोग किए एक जुलूस में जाकर विरोध प्रकट करना. लेकिन ये जो मूल सिद्धांत है वो आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में दिखाया था. श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया नवद्वीप में, उस समय वहां पर मुसलमानों का राज्य था. तो एक काजी को किसी ने समाचार दिया कि ये लोग कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम ये भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं. जब काजी ने यह सुना तो बहुत क्रोधित हो गए. उन्होंने आदेश दिया कि मेरे राज्य में कोई इस तरह से हिंदुओं का नाम कीर्तन नहीं करेगा, और अगर मैंने किसी को देखा करते हुए तो उसको गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी. यही नहीं, उसने सबके सामने एक मृदंग लेकर जमीन पर तोड़ दिया. और जब भक्तों को यह पता चला तो सब घबरा गए, डर गए. उसमें से कुछ भक्त जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया कि ये काजी के पंजों से हमको मुक्त कराओ, हम नाम संकीर्तन करना चाहते हैं लेकिन ये काजी हमें करने नहीं दे रहा, आप मदद करो. श्री चैतन्य महाप्रभु जो त्रिनादपि सुनी चेन है, उस समय वो आग बबूले हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो गए और गुस्से में आकर बोले कि कौन है ये काजी जो मेरे कीर्तन को रोक सकता है. आज मैं आदेश देता हूं कि आज नवद्वीप के सारे भक्त मिलकर काजी के घर में जाकर जुलूस लेकर जाएंगे. सब तैयार करो, सब लोग मशाले तैयार करो. और इस तरह से उन्होंने सबको आदेश दिया. उन्होंने नित्यानंद अद्वैत और गदाधर और श्रीवास से कहा, तुम मेरे साथ में रहो. और अनेक लाखों की संख्या में भक्तों को लेकर वो काजी के घर के पास चल पड़े. जब नाम संकीर्तन हो रहा था वो आवाज इतनी जोर से थी, वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत के लेखक हैं वो बताते हैं कि आवाज ब्रह्मांड की सीमाओं को पार करते हुए जा रही थी. सब भक्त उच्च स्वर में कृष्ण के पवित्र नाम गा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. जुलूस में जाने से पहले सब भक्त अपने अपने घरों से मशाले बना रहे थे. छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े, पुरुष स्त्री नौजवान सब अपने घरों में तेल लेकर और लकड़ी के मशाले बनाकर उस पर कपड़ा रखकर उस कपड़े को तेल में भिगोकर जलाकर मशाले लेकर निकल पड़े. इतने सारे मशाले थे, वृंदावन दास ठाकुर कहते इतना प्रकाश था कि ऐसा लग रहा था रात के समय कि सूर्योदय हो गया है. सूर्य के जो दिन के समय प्रकाश होता है वो प्रकट होने लगा. इधर काजी ने जब सुना तो घबरा गए, बहुत घबरा गए और वो घर के अंदर दुबक कर बैठ गए. संकीर्तन आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा. वो लोग मधाई घाट पहुंचे, बाराकोनिया घाट पहुंचे और अंत में वो सिमुलिया पहुंचे जहां पर काजी का घर था. काजी ने दरवाजा बंद कर दिया और डर के मारे अंदर वो दुबक के बैठा था. बाहर महाप्रभु के सब पार्षद अंदर आने लगे और वो जोर से चिल्ला रहे थे, मार दो काजी को, मार दो काजी को, मार दो, जोर से चिल्ला रहे थे. और ये आवाज सुन के काजी को और अंदर डर लग रहा था. फिर महाप्रभु के पार्षद जब अंदर आए, देखे दरवाजा नहीं खोल रहे, तो उन्होंने उस बगीचे को तहस नहस करना शुरू किया. कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बोला, कहाँ है काजी, आज मैं उसका सिर फाड़ डालूंगा. कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे पेड़ पर चला और कहने लगा, तुम लोग घबराओ मत, कृष्ण नाम कीर्तन करो. इस तरह सब लोग अलग अलग रूप से अपना क्रोध प्रकट करने लगे. श्री चैतन्य महाप्रभु इंतजार कर रहे थे बहुत देर तक, और अंत में जब महाप्रभु का क्रोध थोड़ा कम था, उनका गुस्सा कम हुआ, तब काजी ने दरवाजा खुला। श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बड़े आदर के साथ अंदर बिठाया और श्री चैतन्य महाप्रभु से वो बातचीत करने लगे। वो कहने लगे कि हे काजी, मैं तुम्हारे घर में आया मेहमान के रूप में और तुमने अपने दरवाजे बंद कर दिए। ये किस तरह का आतिथ्य सत्कार है, ये क्या व्यवहार है? तो वो काजी कहने लगा कि ग्राम के व्यवहार से तुम्हारे जो नाना हैं नीलांबर चक्रवर्ती, वो मेरे चाचा लगते हैं। ये नया संबंध बना दिया, पता नहीं तुम्हारे नाना मेरे चाचा लगते हैं, इसका मतलब तुम मेरे भतीजे हो गए और मैं तुम्हारा मामा हो गया। और अगर कोई मामा कोई गलती करता है तो भतीजे को बुरा नहीं मानना चाहिए, और भतीजा अगर गुस्सा होता है तो मामा सहन कर लेते हैं, अर्थात मैं मामा हूं और मैंने गलती की, तुम क्षमा कर दो और मैं भी तुमको क्षमा कर दूंगा। और फिर वो कहने लगा, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में थे और बड़े गुस्से में थे और मैं डर गया था इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अब आपका क्रोध कम है इसलिए मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि हे काजी मामा, आप मेरे प्रश्न का जवाब दो। आप गाय का दूध ग्रहण करते हो, गाय माता के समान है, बैल पिता के समान है, फिर तुम उसका दूध ग्रहण करने के बाद उसकी हत्या करते हो, यह कहां का धर्म है अपनी माता की हत्या करना? तो काजी ने जवाब दिया कि हमारे कुरान में दो प्रकार के धर्म हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में कोई व्यक्ति मांस भक्षण नहीं करता, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में कर सकते हैं। और यही नहीं, तुम्हारे हिंदू शास्त्रों में भी जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। अब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है यज्ञ में मंत्रों की परीक्षा लेने के लिए किसी एक पशु को बलि चढ़ाया जाता है, लेकिन वो ऐसे जानवर को कराया जाता है जो बहुत बूढ़ा हो, और उसी समय मंत्रों की शक्ति से उसको जब अर्पण किया जाए सबके देखते देखते उसको नया शरीर मिलता है। लेकिन कलयुग में ये यज्ञ वर्जित है, ये कलयुग में ब्राह्मण ही नहीं है ठीक से उच्चारण करने वाले। अब किसी को बलि चढ़ाओगे मंत्र बोलोगे वो जिंदा होगा ही नहीं, बेचारा गया वो। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं पांच चीजें जो है वर्जित हैं कलयुग में, उसमें से एक है ये बलि चढ़ाना। कलयुग में एक ही यज्ञ है और वो है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृपया आप लोग इतना जोर से बोलिए कि न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जब कोई उच्च स्वर में भगवान का नाम लेता है तो पेड़ और पशु और जानवर पक्षी और दो पैर वाले पशु सब मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जोर से नाम लेना चाहिए, ये दया का लक्षण है, 10 रुपये दया करने का तरीका। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि हे काजी, तुम ये बात बताओ कि पहले तो तुमने मृदंग तोड़ दिया, हमारे कीर्तन का विरोध किया, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन तुमने कुछ विरोध नहीं किया, क्या कारण है, क्या कारण है? तब काजी ने बताया कि इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, अंदर आप अंदर आइए, मैं अकेले में आपको बताऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो मेरे साथ भक्त बैठे हैं ये मेरे पार्षद हैं, आपको जो बोलना है इनके सामने बोलिए। तब काजी ने बताना शुरू किया, उस रात्रि को मैंने दिन में मृदंग तोड़ा था और रात्रि के समय मैं सो रहा था और मुझे एक बड़ा भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ा। उस स्वप्न में एक बहुत ही भयंकर व्यक्ति जिसका मुंह शेर के समान था और बाकी का भाग जो है मानव के समान था, वो बिल्कुल गहरी आवाज में गरजते हुए मेरे छाती के ऊपर आकर जाकर बैठ गया और जोर से चिल्लाने लगा, हे काजी, तुमने मेरे भक्तों का मृदंग तोड़ा है, अब मैं तुम्हारी छाती तोड़ दूंगा। और ऐसा कहकर वो अपने नाखूनों से मेरे छाती को खरोंचने लगा। मैं बहुत घबरा गया, मैं डर के मारे कांपने लगा। और जब मेरे को डरा हुआ देखकर उस विचित्र नर सिंह ने मेरे को देखकर कहा कि अब मैं तुमको छोड़ रहा हूं, क्योंकि उस दिन तुमने सिर्फ एक मृदंग तोड़ा था, ज्यादा शरारत नहीं की थी, लेकिन अगर इसके बाद अगर तुमने मेरे संकीर्तन आंदोलन का विरोध किया तो मैं न केवल तुम्हें, तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगा। और ऐसे कहकर फिर से वो जोर से गरजने लगे। और तब काजी ने अपने वस्त्रों को, अपने चादर को निकाल कर दिखाया, अभी भी वो निशान बहुत ताजे दिखाई पड़ रहे थे। उसने बताया कि तब से मैंने निश्चय किया कि मैं कीर्तन का कभी विरोध नहीं करूंगा। और फिर उसने बताना शुरू किया कि जब आप कीर्तन कर रहे थे तो मैंने अपने कुछ पायरे को भेजा, नौकर को भेजा, और उसमें से एक नौकर गया और उसने कीर्तन का विरोध करने का प्रयास किया, उसने भक्तों को स्पर्श करके रोकने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने स्पर्श किया भक्त को, उसको भी दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, वो भी गाने लगा जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी कीर्तन में भाग लेने लगा और वापस नहीं लौटा बहुत देर तक। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे भेजे हुए नौकर वापस नहीं आ रहे, तो मैंने दूसरे नौकर को भेजा पहले नौकर को वापस बुलाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा कि ये पहला नौकर है, वो भी कीर्तन में भाग ले रहे हैं संडे फीस्ट में और उन्होंने देखा कि क्योंकि इन सब की एक लंबी दाढ़ी होती है, आप जानते हैं मुस्लिम्स में, तो उसने अपने दाढ़ी को ऐसे ऊपर बांध के रखा था कपड़े के साथ, जिससे कोई पहचान नहीं सके कि ये दूसरे पार्टी से है, और कीर्तन में भाग ले रहा है। तो ये व्यक्ति आया, उसने मुंह से पहचान ले रहे, तुम तो हमारे व्यक्ति हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलो वापस चलो, और हाथ पकड़ा। जैसे उसने हाथ पकड़ा, ये स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसमिशन, उसको दिव्य शक्ति मिली और वो भी गाने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से मैंने जितने भी नौकरों को भेजा उसमें से कोई लौट के नहीं आया, तब मैं समझ गया ये कीर्तन की क्या शक्ति है। इसलिए मैं आज से घोषणा करता हूं कि न केवल मैं बल्कि मेरे वंश में आने वाले कोई भी व्यक्ति कभी भी संकीर्तन का विरोध नहीं करेगा। आज भी आप अगर जाओगे नवद्वीप में तो सीमंत द्वीप सिमुलिया नाम का स्थान है, मायापुर पहुंचने से जस्ट 3 किलोमीटर पहले, और वहां पर काजी की समाधि है। ये काजी कृष्ण लीला में कौन था? यहां पर वो चैतन्य महाप्रभु को बता रहे कि मैं आपका मामा हूं, तो कृष्ण लीला में कौन है? कृष्ण के मामा कंस, अभी आप लोग जन्माष्टमी में सुनेंगे इसकी कथा। तो ये कंस था और इस लीला में उसको इतनी कृपा मिली कि उसको भगवान ने अपने स्वयं का पार्षद बना दिया। आज भी आप जाओगे नवद्वीप में तो काजी की समाधि है, जैसे मुसलमानों के कब्र होते हैं ये समाधि है, और मुसलमान भी और हिंदू भी बड़े आदर से जाकर उस स्थान की पूजा करते हैं और उस स्थान की धूल में लौटते हैं कृपा मांगते हुए। और उनके समाधि के ठीक पीछे आपको एक वृक्ष दिखाई पड़ेगा, एक पेड़, उस वृक्ष के दो भाग हैं, एक नीम का पेड़ है और एक चंपक पेड़ है। श्री चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था नीमाई, क्योंकि उनका जन्म नीम पेड़ के नीचे था, और दूसरी ओर एक चंपक पेड़, क्योंकि काजी का जो एक नाम था, निकनेम यानी जैसे कोई नाम जिससे व्यक्ति को बुलाया जाता है उसको चंपक बोलते थे, जैसे किसी बच्चे को हम बोलते हैं चुन्नू मुन्नू, या इसका नाम था चंपक। तो चंपक वृक्ष और नीम वृक्ष दोनों आपको एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखेंगे। ये है सच्ची यूनिटी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब धर्म एकत्र हो सकते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा। आज शिला प्रभुपाद की कृपा से ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में, रशिया में, दुबई में, सऊदीया में, जहां पर हिंदू धर्म का अभ्यास करना मना है, वहां पर भी लोग खुलेआम या छिपके कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज के दिन हमें जानना चाहिए कि वास्तव में अगर कोई देश को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला है तो वो शिल प्रभुपाद हैं, क्योंकि शिल प्रभुपाद ने भारत की जो मूल संस्कृति है उसको न केवल यहां पर जागृत किया, उसी संस्कृति को यहां से लेकर दुनिया के हर देश में और हर गांव में प्रचार किया। शिल प्रभुपाद की जय। आज शिल प्रभुपाद की कृपा से सब मानवता को, सब जाति के लोगों को एक अवसर मिलता है कि अपनी मूल स्थिति को पहचानने का, कि मैं कृष्ण का दास हूं, और इसी स्तर पर एकता हो सकती है न केवल भारत में पूरे विश्व में। जब प्रथम महायुद्ध हुआ 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, उसके बाद दूसरा महायुद्ध हुआ तब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, संयुक्त राज्य। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब करने के बाद भी युद्ध होते रहते हैं। जिनेवा में जहां पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है वहां पर झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस की जगह डिस यूनाइटेड नेशंस होता जा रहा है, देश और आपस में विभाजित होते जा रहे हैं। लेकिन अगर भगवद गीता के संदेश को लोग स्वीकार करते हैं, एकम शास्त्रम, यही एक शास्त्र है, एकम देवम देवकी पुत्र, एक ही देव भगवान कृष्ण, और एक ही मंत्र, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र के शक्ति से ही न केवल भारतवर्ष मुक्त हो सकता है बल्कि पूरा विश्व मुक्त हो सकता है। और यही आज के श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिति। मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, ये माया है, पकड़ के रखा है उसने हमको चंगुल में। जैसे कभी कभी कोई देखते हैं कोई टार्जन या कोई किसी व्यक्ति को हाथ में पकड़ लेता है, ऐसे माया ने पकड़ लिया। लेकिन हम कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो माया मुक्त कर देते हैं। और कृष्ण की शरण में कैसे आना है, कृष्ण कहाँ है, हम कृष्ण को देख नहीं सकते। एक तो कृष्ण अर्च विग्रह के रूप में आए हैं, उस रूप में देख सकते हैं, और दूसरा कृष्ण नाम के रूप में, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान कृष्ण अपने सारी शक्तियों के साथ अपने नाम में आए हैं। भगवान की सारी शक्तियां नाम में हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति सब नाम में है, उनकी कृपा शक्ति नाम में है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आज के दिन आप निश्चय करिए, जो लोग अभी जप नहीं कर रहे कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, और जो लोग जप कर रहे हैं वो निश्चय करिए कि मैं इतनी तीव्रता से जप करूंगा, मैं भगवान को ऐसे पुकारूंगा कि हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्। हे कृष्ण आप करुणा के सागर हो, मेरे को इस संसार से निकालो, मुझे संसार रूपी जेल से मुक्त करो, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। श्री राधा रानी से प्रार्थना करनी, तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रि, कि हे राधा रानी आप बहुत दयालु हो, आप मेरे पर दया करो, वृषभानु दुलारी हो। रूप गोस्वामी जो हमारे संप्रदाय आचार्य हैं वो एक सुंदर भजन में ऐसा बोलते हैं, करुणा करुमाई करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरित, हे करुणा, हे राधा रानी आप करुणा के सागर हो, आप मेरे पर दया करो। मैं एक छोटी सी घटना कहकर प्रवचन का अंत करूंगा। राधा कुंड के पास वृंदावन में ब्रज में एक स्थान है जिसको बोलते हैं राधा कुंड, जहां पर राधा रानी और कृष्ण का राधा कुंड और श्याम कुंड है। उसके जस्ट पास में एक कहानी हुई थी, एक लीला हुई थी कि एक जानवर था, एक शी जैकल कोली एक जानवर, उसको कुछ छोटे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, वो भागने का प्रयास कर रही थी और उसको पत्थर से मार रहे थे। अंत में बहुत परेशान होकर वो एक नीचे जमीन के अंदर चली गई, एक होल में छिप गई। लेकिन ये बच्चे बड़े बदमाश थे, इन्होंने उस होल के आसपास चारों ओर एक आग लगा दी जिससे बाहर नहीं जा सके और अंदर ही जल कर नष्ट हो जाए। उस दयनीय अवस्था में कोई उपाय नहीं था, लेकिन उसको पता था कि ये राधा रानी का गांव है राधा कुंड, तो इसलिए उसने राधा रानी से पुकारना शुरू किया जोर से, जैसे आप पहले पुकार रहे थे, राधे 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 राधे। जब वो जोर से राधा रानी को पुकारने लगी, राधा रानी वहां से जा रहे थे अपनी सखियों के साथ, तो ललिता सखी को भेजा कि तुम जाओ, तुम जल्दी से जाओ और देखो कोई भक्त कोई जीव मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो तुरंत जब वहां पर गए उन्होंने तुरंत उस अग्नि को बुझा दिया और उस जानवर को बाहर निकाल दिया। हमारी स्थिति भी ऐसी है, ये संसार उस होल के समान है जहां पर हम लोग हैं अभी, और माया ने चारों ओर से आग लगा के रखी है। आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख हैं, तीन प्रकार के ताप जो जीव को बहुत परेशान करते हैं। कोई सुखी नहीं हो सकता इस दुनिया में। आप में से कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मैं सुखी हूं पूर्णतया? कितने लोग को लगता है कि मैं थोड़ा सा दुखी हूं? हाथ ऊपर करिए। हम दुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं। कितने लोग लगता है कि दुनिया में हम दुखी हैं, हाथ ऊपर करी, सभी लोग कि नहीं। तो हमें भी ये प्रार्थना करनी है राधा रानी से आज के दिन कि मेरे को इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त करो। भगवान सिर्फ यही चाहते हैं कि हम उनका नाम सच्चे दिल से पुकारें। और अगर आप एक बार भी, अगर आप एक बार भी सच्चे दिल से बोलते हो हे राधे, हे कृष्णा, मैं आपका हूं, अगर अगर आप सच्चे दिल से एक बार भी बोलते हैं तो भगवान आपको इस माया के जेल से मुक्त कर देंगे और वापस गोलोक वृंदावन ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बार फिर से जरा जोर से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।